नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जूली डिक्सन की किताब डिजाइन फॉर हाउ पीपल लर्न, सीखने के अनुभव बनाने पर केंद्रित एक व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है। इसका विषय केवल पाठ्य सामग्री को आकर्षक बनाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि लोग ध्यान कैसे देते हैं, जानकारी कैसे याद रखते हैं, कौशल कैसे विकसित करते हैं और वास्तविक परिस्थितियों में नया व्यवहार क्यों अपनाते या छोड़ देते हैं। डिक्सन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, उपयोगिता डिजाइन और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को सरल चित्रों, रूपकों और कामकाजी उदाहरणों के माध्यम से जोड़ती है। पुस्तक का मुख्य आग्रह है कि जानकारी दे देना सीखने का प्रमाण नहीं है। किसी प्रशिक्षण, कक्षा, प्रस्तुति या डिजिटल मॉड्यूल की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि सीखने वाला बाद में अपेक्षित काम कर सकता है या नहीं। इसलिए लेखक सामग्री, अभ्यास, प्रेरणा और कार्यस्थल के संदर्भ को एक साथ देखने का ढांचा देती है। यह पुस्तक प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रबंधकों, ई लर्निंग निर्माताओं और उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइनरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी मार्गदर्शिका है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जानने और वास्तविक काम करने के बीच की दूरी को पहचानना। पुस्तक का सबसे केंद्रीय विचार यह है कि ज्ञान अपने आप प्रदर्शन में नहीं बदलता। कोई व्यक्ति नियम पढ़ सकता है, प्रक्रिया समझा सकता है या सही उत्तर चुन सकता है, फिर भी काम के समय उसे लागू नहीं कर पाता। डिक्सन के अनुसार, सीखने की समस्या को पहले प्रदर्शन की समस्या के रूप में परिभाषित करना चाहिए। डिजाइनर को यह स्पष्ट करना होता है कि सीखने वाले को प्रशिक्षण के बाद कौन सा दिखाई देने वाला काम करना है, उस काम के कौन से छोटे निर्णय और कदम हैं, तथा वास्तविक वातावरण में कौन सी बाधाएं आती है। यह दृष्टि सामग्री की सूची से शुरुआत करने की आदत को चुनौती देती है। उदाहरण के लिए, यदि लक्ष्य ग्राहक की शिकायत संभालना है तो केवल नीति याद कराना पर्याप्त नहीं होगा। सीखने वाले को स्थिति पहचाननी, उचित भाषा चुननी, उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करना और दबाव में निर्णय लेना भी आना चाहिए। इसलिए पुस्तक वास्तविक उदाहरणों, स्थितियों और निर्णय आधारित अभ्यास को महत्व देती है। इसका व्यावहारिक निहितार्थ यह है कि हर सीखने के बिंदु के लिए पूछा जाए कि उसका काम की दुनिया में उपयोग कैसा दिखेगा। जब उत्तर स्पष्ट हो तो संभव है कि सामग्री जरूरी ना हो, लक्ष्य अधूरा हो या समस्या प्रशिक्षण के बजाय प्रक्रिया और वातावरण की हो। इस तरह पुस्तक सीखने को सूचना प्रसार नए सक्षम व्यवहार के डिजाइन के रूप में स्थापित करती है। दूसरा, ध्यान, स्मृति और संज्ञानात्मक बोझ के अनुरूप सामग्री बनाना। डिक्सन सीखने के डिजाइन को मानव ध्यान और स्मृति की सीमाओं से जोड़ती है। उनका तर्क है कि लोग किसी प्रस्तुति, स्क्रीन या पाठ में मौजूद हर सूचना को समान रूप से ग्रहण नहीं करते। ध्यान सीमित है, कार्यशील स्मृति जल्दी भर सकती है और बिना उपयोग के नई जानकारी आसानी से भुलाई जा सकती है। इसलिए बहुत अधिक विवरण, असंबद्ध सजावट या एक साथ कई नए विचार देने से सीखना बेहतर नहीं होता। पुस्तक सामग्री को छोटे अर्थपूर्ण हिस्सों में बांटने, मुख्य संकेतों को स्पष्ट रखने और नई बात को पहले से ज्ञात अनुभव से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर बल देती है। लेकिन छोटे हिस्से बनाना केवल सामग्री काट देना नहीं है। हर हिस्सा उस मानसिक संरचना से जुड़ा होना चाहिए जिसे सीखने वाला बाद में याद कर सके। चित्र, उदाहरण और तुलना तभी सहायक हैं जब वे अवधारणा समझने में मदद करें, केवल दृश्य आकर्षण न बने। पुनरावृत्ति भी यांत्रिक दोहराव नहीं, बल्कि अलग परिस्थितियों में याद करने और उपयोग करने का अवसर होनी चाहिए। यह अंतर विशेष रूप से डिजिटल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण है, जहां क्लिक करने की गतिविधि को अक्सर सीखने का प्रमाण मान लिया जाता है। पुस्तक डिजाइनर को यह सोचने के लिए कहती है कि क्या सीखने वाला महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान देगा, उसे अर्थपूर्ण रूप से जोड़ेगा और बाद में जरूरत पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त कर पाएगा। इस कसौटी से सामग्री का आकार, क्रम और माध्यम तय होता है। तीसरा, अभ्यास, फीडबैक और यथार्थपरक परिदृश्यों से कौशल विकसित करना। ज्ञान और कौशल में अंतर पुस्तक की संरचना का महत्वपूर्ण आधार है। तथ्य जानने के लिए स्मरण सहायक हो सकता है, लेकिन कौशल के लिए निर्णय, अभ्यास और परिणामों की समझ चाहिए। डिक्सन बताती है कि सीखने वाले को केवल सही तरीका दिखाना पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसी स्थिति में कोशिश करनी होती है जहां उसे संकेतों को पहचानना, विकल्पों में भेद करना और कार्रवाई चुनना पड़े। परिदृश्य आधारित गतिविधियां इसी कारण उपयोगी है, क्योंकि वे वास्तविक काम की जटिलता का नियंत्रित रूप प्रस्तुत करती है। अच्छे परिदृश्य में प्रश्न का उत्तर पाठ में शब्दशः मौजूद नहीं होता, सीखने वाले को सिद्धांत को परिस्थिति पर लागू करना पड़ता है। लेखक इस उपयोगी कठिनाई को घर्षण के रूप में देखती है। यदि हर गतिविधि इतनी आसान हो कि उत्तर तुरंत दिख जाए तो विचार और निर्णय का अभ्यास नहीं होता। फीडबैक भी केवल सही या गलत बताने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रभावी फीडबैक यह स्पष्ट करता है कि चुना गया विकल्प क्यों उचित या अनुपयुक्त था, कौन सा संकेत महत्वपूर्ण था और अगली बार क्या देखना चाहिए। कौशल बढ़ने पर अभ्यास को अधिक विविध और कम सहारे वाला बनाया जा सकता है। यह ढांचा प्रशिक्षकों को व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तरी जोड़ने के बजाय प्रदर्शन के वास्तविक क्षणों के आसपास अभ्यास बनाने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप मूल्यांकन भी याददाश्त से आगे बढ़कर अनुप्रयोग और निर्णय की जांच कर सकता है। चौथा, राइडर और एलिफेंट के माध्यम से प्रेरणा की दोहरी प्रकृति। डर्कसन जोनाथन हाइट के राइडर और एलिफेंट रूपक का उपयोग करके समझाती है कि तर्कसंगत समझ और भावनात्मक प्रेरणा अलग चीजें हैं। राइडर योजनाबद्ध, विश्लेषणात्मक और लक्ष्य केंद्रित सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एलिफेंट आदतों, भावनाओं, तात्कालिक इच्छाओं और सहज प्रतिक्रियाओं का। कोई व्यक्ति तार्किक रूप से जान सकता है कि उसे सुरक्षित प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ग्राहक से शांत रहकर बात करनी चाहिए या नया उपकरण उपयोग करना चाहिए, लेकिन वास्तविक क्षण में सुविधा, डर, सामाजिक दबाव या पुरानी आदत उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए केवल कारणों और नियमों से भरा प्रशिक्षण अक्सर अधूरा रहता है। राइडर को स्पष्ट दिशा, सरल कदम और समझने योग्य तर्क चाहिए। एलिफेंट को महत्व, भरोसा, भावनात्मक प्रासंगिकता और इतना आसान अगला कदम चाहिए कि वह कार्रवाई को टाले नहीं। पुस्तक का उद्देश्य भावनाओं से मनोवैज्ञानिक चाल चलना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि व्यवहार परिवर्तन में भावना, पहचान और तत्काल संदर्भ की भूमिका होती है। डिजाइनर को जानना चाहिए कि सीखने वाले के लिए बदलाव का लाभ क्या है, लागत या जोखिम क्या लगता है और कौन सी भावनात्मक बाधा काम रोक सकती है। इस दृष्टि से प्रेरणा को पाठ की शुरुआत में जोड़ा गया उत्साहवर्धक संदेश नहीं, बल्कि पूरे अनुभव और कार्य संदर्भ में निर्मित स्थिति माना जाता है। अंत में, सीखने के वातावरण को बदलकर याद रखने की जरूरत कम करना। पुस्तक का एक व्यावहारिक और अक्सर उपेक्षित संदेश यह है कि हर समस्या का उत्तर प्रशिक्षण नहीं होता। यदि किसी काम के लिए सही जानकारी बार बार याद रखनी पड़ती है, तो डिजाइनर को यह भी पूछना चाहिए कि क्या जानकारी को काम के स्थान पर दिखाई। खोजी या प्रक्रिया में अंतर्निहित बनाया जा सकता है। डर्कसन इसे वातावरण के लिए डिजाइन करने के रूप में प्रस्तुत करती है। चेकलिस्ट, निर्णय सहायक, स्पष्ट इंटरफेस, समय पर संकेत और बेहतर कार्यप्रवाह ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति की स्मृति पर निर्भरता घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया को केवल वार्षिक प्रशिक्षण में पढ़ाने के बजाय जरूरत के समय उपलब्ध स्पष्ट सहायता से समर्थित किया जा सकता है। यह सीखने को कमतर नहीं करता, बल्कि प्रशिक्षण को उन बातों पर केंद्रित करता है जिनके लिए वास्तव में समझ, निर्णय और अभ्यास आवश्यक है। वातावरण का विश्लेषण सामाजिक पक्ष भी शामिल करता है। यदि प्रबंधक अपेक्षित व्यवहार को समर्थन नहीं देते, उपकरण अनुपलब्ध है, समय नहीं है, या सहकर्मी पुरानी पद्धति अपनाते हैं, तो अच्छा प्रशिक्षण भी कमजोर पड़ सकता है। इसलिए डर्कसन का ढांचा सीखने वाले को अलग व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। वह व्यक्ति काम, उपकरण और सामाजिक परिस्थितियों के संबंध को देखता है। यह विचार विशेष रूप से संगठनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे वे प्रशिक्षण को हर प्रदर्शन समस्या का स्वचालित समाधान मानने के बजाय प्रणालीगत सुधार के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। निष्कर्ष में डिजाइन फॉर हाउ पीपल लर्न उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सीखने की सामग्री बनाते हैं और यह देखना चाहते हैं कि उसका असर वास्तविक काम पर पड़ रहा है या नहीं। इसमें कॉर्पोरेट प्रशिक्षक, शिक्षक, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, विषय विशेषज्ञ, उत्पाद टीमों के उपयोगकर्ता, अनुभव डिजाइनर और ऐसे प्रबंधक शामिल हैं जिन्हें नई प्रक्रियाएं अपनावानी है। शुरुआती पाठक इसे सीखने और स्मृति के प्रमुख सिद्धांतों का सुलभ परिचय मान सकते हैं, जबकि अनुभवी पेशेवर इसे अपनी डिजाइन आदतों की जांच के लिए उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह अस्पष्ट मांगों, जैसे अधिक आकर्षक प्रशिक्षण बनाइए, को अधिक उपयोगी प्रश्नों में बदलती है। अपेक्षित व्यवहार क्या है? सीखने वाले को किस निर्णय में कठिनाई है? किस अभ्यास की जरूरत है? प्रेरणा कहाँ टूटती है? और क्या वातावरण काम को आसान या कठिन बना रहा है? इसी प्रश्न शैली से बेहतर गतिविधियां, उपयोगी फीडबैक और अधिक यथार्थपरक सहायता तैयार की जा सकती है। समान श्रेणी की अनेक किताबें या तो शैक्षणिक सिद्धांतों पर अधिक केंद्रित रहती है या उपकरणों और प्रारूपों की सूची देती है। डर्कसन की अलग पहचान यह है कि वे मनोविज्ञान को सीधे डिजाइन निर्णयों से जोड़ती है और सूचना देने, कौशल सिखाने, प्रेरित करने तथा कार्य वातावरण सुधारने के बीच अंतर बनाए रखती है। यह कोई एक तयशुदा नुस्खा नहीं देती, बल्कि समस्या को सही ढंग से देखने का ढांचा देती है। इसलिए इसका स्थायी मूल्य उन पाठकों के लिए अधिक है जो केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं, बल्कि सक्षम और टिकाऊ प्रदर्शन डिजाइन करना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जूली डर्कसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।